فبشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو برباد نہ کرو. سورۃ محمد کی آیت نمبر 33 ہے یہ. اس کی روشنی میں آج ہم دیکھیں گے کہ دعا مانگنے کے دوران بھی انسان کیا کوئی ایسے کام کرتا ہے کہ جو کہ سنت سے ہٹتے ہوئے بدعت کی طرف جاتے ہیں. تو آپ دیکھیے کہ ہم نے شروع میں یہ چیز دیکھی تھی کہ آج دعا هو العبادۃ، دعا عبادت ہے. پہلی بات یہ سمجھ لیں، کیا عبادت اپنی مرضی سے کی جا سکتی ہے؟ رکوع یا سجدہ اپنی پسند سے کر لیں، دو رکوع کر لیں، چار سجدے کر لیں، نہیں کر سکتے نا. تو بس اسی میں اس جملے کا جواب ہے کہ جب دعا بھی عبادت ہے تو پھر دعا بھی ویسے ہی کریں گے جیسے کہ کرنے کا حکم دیا گیا. ہمارے ہاں دعا کے معاملے میں ایک بہت ہی زیادہ جو غلط مسئلہ پایا جاتا ہے وہ کیا ہے کہ جس کا جس طرح دل چاہے دعا کرتے ہیں، اور پھر اس کے اندر کچھ سابقے، کچھ لاحقے، کچھ آگے کی باتیں پیچھے کی کرتے ہیں. جب کوئی منع کرے کہ بھئی اس طرح تو اللہ کے نبی نے نہیں کیا اور اس طرح تو دوسرے انبیاء کرام نے نہیں کیا، تو کہتے ہیں فرق کیا پڑتا ہے؟ تو فرق یہ پڑتا ہے کہ دعا عبادت ہے، اور دعا کو دوسری عبادت کی طرح ہم اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے. ہم کوئی بھی کام جو کریں گے اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پہ کریں گے. جس طرح آپ نے دعا مانگی ہم بھی اسی طرح مانگیں گے. جس سے آپ نے صریحاً روک دیا ہم رک جائیں گے. جن معاملات پہ خاموشی ہے دعا مانگنے کے ہم اس کو پرکھیں گے، کیا اس میں کوئی شرک تو نہیں، کیا اس میں کوئی ایسی چیز تو نہیں کہ جس میں شریعت کی کوئی خاص چیز پیچھے رہتی ہے. تو اگر ایسی چیز نہیں ہے، آپ کا اپنا دل چاہے آپ کر لیں، لیکن دوسروں کو مجبور نہیں کر سکتے. مثلاً آپ دیکھیے کہ دعاؤں کے نام پہ سب سے خوبصورت دعائیں ہیں جو قرآن میں ہیں، تقریباً 40 کے قریب دعائیں ہیں اگر آپ ریپیٹیشن کو نکال دیں کہ جو ہمیں قرآن پاک سے ملتی ہیں، اور اس کو آپ لوگ فینی قریب میں پڑھتے بھی ہیں. پوری ترتیب کے ساتھ اس میں قرآن پہ کتاب موجود ہے، ویب سائٹ پہ بھی یہ دعائیں موجود ہیں، آپ اسے سن سکتے ہیں، فائدہ اٹھا سکتے ہیں. دوسری دعاؤں کی قسم ہوتی ہے مسنون دعائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. تقریباً نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہمیں دعائیں ملتی ہیں وہ 700 کے قریب ہیں صحیح روایات سے. اور ابھی بھی یقین کریں کہ اردو کلچر میں ساری دعاؤں کا ترجمہ نہیں ہو پایا، یعنی اردو زبان میں وہ دعائیں عام ہی نہیں ہیں. ہم چند دعاؤں کو جانتے ہیں، لیکن ابھی خزانہ ایک پورا حدیث کی کتابوں میں دعاؤں کا موجود ہے. وقت کے ساتھ ساتھ لوگ عربی کتابوں کے جب چونکہ اردو میں ترجمے کر رہے ہیں، پھر اس کی تخریج اور اس کے ساری سند کا خیال رکھتے ہوئے نئی کتابیں دکھتی ہیں، جس میں سے ایک کتاب جو آج سے 4-5 سال پہلے نہیں دکھتی تھی ہمیں لیکن اب موجود ہے، بہت فیمس، حسن المسلم کے نام پر، سیٹاڈیل آف بلیور یا فورٹریس آف بلیور کے نام پہ انگلش میں اس کے ترجمے. بہرحال اس وقت دعا کے موضوع پہ سب سے زیادہ چھپنے اور بکنے والی بٹنے والی یہی کتاب ہے. اب اس کی دعائیں جب آپ پڑھتے ہیں، آپ نے اس میں سے کبھی وہ پڑھی نہیں تھی پہلے. نماز میں رکوع میں کرنے کی 5-6 دعائیں ہیں، سجدے میں کرنے کی ہیں، تشہد میں پڑھنے والی 7-8 دعائیں ہم لوگوں نے نہیں کبھی پڑھی تھی پہلے. تو لہٰذا کل کے دور میں کوئی اور دعائیں ایسی نکل سکتی ہیں جو ہماری زبان میں ترجمہ ہوگا، ان شاء اللہ تعالیٰ ہم اس کو پڑھتے جائیں گے، سنتے جائیں گے. اب رہ گئی بات کہ اس کے بعد باقی دعائیں، مثلاً ہمارے ہاں مختلف دعائیں دکھتی ہیں، کوئی دریائے دعائے جمیلہ، دعائے حبیب، دعائے سریانی، دعائے امن، دعائے مستجاب، دعائے نور، دعا نصف شبے، پھر دعا خزب البحر، دعائے اکاشا، گنج بخش، گنج الرش، دعائے منزل، عہد نامہ، قصیدے، قصیدہ غوثیہ، شش کفل یعنی 6 تالے کھولنے والی دعائیں، ہفت ہیکل، نام بھی نہیں آتے پڑھنے ہمیں صحیح طرح سے، درود تاج، درود لکھی، درود اکبر، درود مقدس، ماہی. اب آپ دیکھیں یہ سارے نام، آپ فیل کریں گے کہ اس میں سے اکثر نام اردو میں، نہ قرآن میں یہ ملتی ہیں نہ حدیث میں ملتی ہیں، اذکار میں ان کو لے لیں یا دعاؤں میں لے لیں. لیکن اس کے باوجود مسلمان کلچر میں اتنے رچ بس چکے ہیں کہ شاید ہی کوئی گھرانہ ایسا ہو کہ جس میں یہ ہو نہ اور اس کو پڑھنے والے نہ. بعض لوگ قرآن نہیں پڑھ پاتے، लेकिन वो इन दुआओं की पूरे तमाम के साथ पढ़ते हैं और उनको करते हैं। इसके बारे में इस्लाम क्या कहता है? क्योंकि अब यहाँ फिर हमारे ज़हन में आना चाहिए कि इस्लामी नुक्ता नज़र, ना मेरे अफकार, ना किसी की मोहब्बत में कोई बात कहनी है, ना चिड़ में कहनी है, इन सारी दुआओं को आप अलग करें। देखें मसलन अगर मेरे पास इस वक्त होती हुई दुआ तो मैं वो आपको दिखाती, अगर आपके पास कहीं है तो आप मुझे दें, मैं आपको अभी उसमें से बता सकती हूँ। मसलन एक इसमें दरूद में तंजीना के नाम पे आता है। अब आप देखिए मिसाल है, इन्होंने लिखा है दुआए सुरियानी, हम उसको खोल के देखते हैं। पहली बात यह है कि उसके अंदर जो लफ्ज़ है वो किसी इंसान के ही हैं, ऑफकोर्स कोई नेक है, कोई वली है, हम तो किसी को कुछ नहीं कहते। आप ये सोच के पढ़ देना कि ये दुआ पढ़नी बहुत सवाब की बात है, ये अच्छी है, ये खास है, बिल्कुल इजाजत नहीं। क्यों? कि सवाब का होना या ना होना इसका मिदार नबी के साथ खत्म हो जाता है। नबी ने कह दिया ये करो सवाब है, उसके बाद आप सेकंड ग्रेड पे लाते हैं, आप उस दुआ को पढ़ते हैं, उसके लफ्ज़ बड़े खूबसूरत है। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे बाज लोग दर्द के खात्मे पे कहते हैं जी आप दुआ करा दें, ऐसे ही लोगों की एक तसल्ली होती है, हालांकि कोई लाजमी नहीं है। किसी का दिल ना तोड़े आप कहते हैं चले हम दुआ करते हैं। आप दुआ करते हुए आप देखते हैं कि दिल से दुआएं निकलती हैं। बाज दफ़ा जब इज्तमाही दुआ होती है तो इंसान सबके लिए करता है, कभी अल्लाह की तारीफ करता है। अब वो मिसाल है मैं ही ऐसा करूँ तो मेरे लफ्ज़ है ना, आपने आमीन कह दिया, आप वहां मौजूद थे, आप उस दुआ को ये सोच के पढ़ रहे हैं कि चलें भाई हमें इस तरह के लफ्ज़ नहीं बोलने आते या हमारे पास से नहीं आते तो हम उसको मांग लेते हैं। लेकिन ये सोचना कि इन्हीं लफ्ज़ों में मांगेंगे और इसमें 19-20 का फ़र्क ना हो और इस पे अराब लगा दें, इसके मेरी मांगी भी उर्दू दुआ का किसी से अरबी में तर्जमा कराएं, फिर वो दुआएं किताबों में छापें, ये जायज़ नहीं। सिंपल सी इसकी मिसाल देखें कि हर साल रमज़ान में हर रात को तरावियों के बाद या तहज्जुद में इमाम हरम जो है वो नमाज दुआएं पढ़ाते हैं। मेरे पास अभी भी एक बुक है कहीं रखी हुई कि जिसमें बाकी दुआओं के साथ पिछले कुछ सालों की काबा के जो इमाम हैं उनकी दुआएं लिखी हुई हैं। अरबी उनकी ज़ुबान है, खूबसूरत लफ्ज़ है। अगर आप इस सोच से वो पढ़ रहे हैं कि मेरे पास जज्बे तो हैं लफ्ज़ खूबसूरत नहीं, आपका अपना अमल है, लेकिन ये मेरा ही हमारा ईमान नहीं है कि चूंकि इमाम शुरैम ने वो पढ़ ली थी या इमाम सुदेस ने पढ़ी थी आप मैं इन्हीं लफ्ज़ों में पढ़ूंगी तो मुझे सवाब होगा, कतन इसका सवाब नहीं। हाँ अगर उन दुआओं में अब आप देखें कि कहीं शिर्क है, कहीं अल्लाह के नबी के लिए एग्जैजुरेशन है, फिर तो इसकी इजाज़त नहीं। तो सारी बात का खुलासा क्या है कि कुरान और हदीस की दुआओं के बाद जितनी दुआएं हमें मिलती हैं मार्केट में हम उसको दो हिस्सों में बांटेंगे। एक वो हिस्सा जिसमें शिर्क है, जिसमें सरीहन इस्लाम का कोई हुक्म टूटता है, उसमें गलूब है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, उनको तो सबको डिस्कार्ड कर दे, फाड़ दें अल्लाह ताला के लिए कि अल्लाह ताला जब मेरे पास इतनी अच्छी चीज़ें मौजूद हैं तो मुझे और चीज़ की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि अल्लाह के नबी ने जब हज़रत उमर के हाथ में एक सफ़ा देखा था तौरात का तो आप गुस्से में आ गए थे, तो आपने कहा कि अगर आज वो मूसा भी ज़िंदा होते जिनके ऊपर ये किताब उतरी थी और मुझे छोड़कर तुम उनकी इतबा करते तो तुम पीछे मतलब हिदायत से दूर हो जाते, वो भी मेरी ही इतबा करते। और सही बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है कि जिसने दीन में कोई ऐसा काम किया जो काम शरीयत में नहीं है तो वो रद्द हो जाएगा। निसाई की रिवायत है कि हर नई चीज़ जो है वो बिदत है और बिदत गुमराही है और गुमराही का ठिकाना आँख है। इसी तरह इब्ने अबी आसिम की एक रिवायत है कि सुन्नत रसूल से गुरेज करने वाला हलाक होने वाला है। क्योंकि जब हम ऐसी चीज़ों पे पढ़ते हैं तो सही दुआओं को पढ़ने का वक्त ही नहीं रहता, आदत चुके हो चुकी होती है, तो कोई ऐसी चीज़ जिसमें सुन्नत के खिलाफ कोई ऐसी चीज़ है उसको निकाले, बाकी रह गई दूसरी बातें, वो गंज बख्श है, वो फुला है। पहली बात है किसी भी नस्बत से पाक होते हुए यदि बुज़ुर्गों की हैं औलिया कराम की है इसको भी हटा दें साथ से। फिर उसके साथ उसकी तादाद 10 दफ़ा पढ़े, 16 दफ़ा पढ़े, 313 दफ़ा पढ़े। बाज़ वज़ाइफ़ लोग 313 पे पढ़ते हैं, पता है क्यों? कि सहाबे बदर 313 थे, लेकिन अल्लाह ना करे ज़िंदगी में बदर वाली कैफियत आ जाए तो शायद 300 क्या 3 भी उसमें जाके शिरकत करने वाले ना हों। उन सारी दुआओं को वक्त की कैद से सारी उसके नीचे जितनी लिखी है ना इतनी दफ़ा पढ़ें, इस वक्त पढ़े, उसको काट दें अगर उसकी कोई सनद नहीं है हमारे पास। हम बात ही उनकी कर रहे हैं कि जिसकी सनद नहीं है। फिर उसमें वो लफ्ज़ है आपका दिल चाहता है आप पढ़ लें, कभी भी पढ़ लें, ना उसको रोज़ पढ़ें। देखिए मैं अपने हाथ से खाना पका के खाना पसंद करती हूँ ना, मुझे अच्छा लगेगा कि मैंने अपने टेस्ट का खाना पकाया। कभी कभी मैं किसी के हाथ का भी खा लूँगी, ठीक है, नो प्रॉब्लम। दुआ जो है ना ये अपने हाथ से खाना पकाने वाली चीज़ है, ये तो आपके अंदर से निकलती है। आपके अंदर जो जज्बात अल्लाह के लिए होते हैं, जो तड़प होती है, जो बेचैनी है, जो आपके दिल से जज्बात उठते हैं, फर्क होता है। आप अपने, मैं बोल रही हूँ अपने दिल से बोल रही हूँ, और अगर मैं किसी के बोले हुए लफ्जों को पढ़ पढ़ के बोलूँ वो तासीर नहीं होती। वही दुआएं काम आती हैं जो हमारे दिल से निकलती हैं। हमने दुआ को भी बस एक किस्म का फरीजा समझ लिया या उसका एक खास हिसाब समझ लिया, तो इसकी जरूरत नहीं। इसके बाद कुछ दुआओं या कुछ वज़ाइफ को जिक्र के नाम पर किसी मन माने तरीके से करना, मसलन अल्लाह अल्लाह कहते रहना, अल्लाह हू कहते रहना, या कुछ इस किस्म का काम करना कि एक बंदा बोले और सारे उसके पीछे बोलते जाएं। अगर अल्लाह के नबी के साथियों ने नहीं किया, आपने नहीं किया, तो हम नहीं कर सकते। एक मौके पे नबी सल्लम की वफ़ात के कुछ ही साल के बाद एक सहाबी थे, उनको किसी ने आके खबर दी कि मैंने एक अजीब चीज़ मस्जिद में देखी कि जो ही फर्ज नमाज ख़त्म हुई, लोग जो थे वो एक हल्के में बैठे, यानी गोल दायरा बना के बैठे, फिर एक ने कुछ पढ़ा तो सब ने उसके पीछे वही पढ़ना शुरू कर दिया। हालांकि हमने अल्लाह के नबी के दौर में ये करते हुए नहीं देखा। ठीक है, सहाबा कराम का ये अमल ना कि हमने नहीं देखा, ये बहुत बड़ी सनद है हमारे लिए। वो तसव्वुर ही नहीं करते थे कि कोई ऐसा काम हम दीन का करें जो आप अल्लाह के नबी के दौर में नहीं किया। उन्होंने कहा अच्छा अगर कल फिर करेंगे ऐसा तो फिर मुझे बताना। उन्होंने अगले दिन कहा आज फिर देखा। फिर वो सहाबी गए, या तो हज़रत अली इब्ने अब्बास का नाम मेरे जहन में आ रहा है या हज़रत अली में से कोई थे, तो उन्होंने जाकर फिर खुतबा दिया मस्जिद में, बहुत दिलसोज के लोगों, अभी तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बर्तन भी नहीं टूटे, अभी तो आपकी बीवियाँ भी जिंदा हैं, और तुमने अपने दीन में इस तरह के सफ़े शुरू कर दिए कि अल्लाह के नबी जो दीन हमें देखे कि उसको बदल रहे हो। आज के बाद अगर किसी ने ऐसा किया तो फिर मैं उसको इस मस्जिद में ना देखूँ। वार्निंग दे दी ना। अगर सहाबे कराम और आपके बाद के ताबईन, तबा ताबईन, मुहद्दसीन और आइमे कराम इतनी सख्ती ना करते, तो यकीन करें कि यहूद और नसारा की तरह हो सकता है कि आज कुरान हमारे नापैद होते और हम इससे भी 10 गुना ज़्यादा किताबें अपने घरों में और अपने इर्द गिर्द पाते, क्योंकि आसान लगती है ना। और कुरान को तकद्दस के नाम पे सोने चांदी से लिख के कहीं ऊपर रख लेते तो ये चीज़ें दुरुस्त नहीं। ख़ास तौर पर फिर एक तसव्वुफ की जो टर्म है कि बास लोग इस तरीके से जिक्र 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 करते हैं अल्लाह का कि फिर कहते हैं कि नऊज़ बिल्लाह अल्लाह हमारे अंदर हलूल कर गया, हमने इतनी दफ़ा अल्लाह का नाम लिया, इतनी दफ़ा कलमा पढ़ा है, बास दुरूद शरीफ इतनी दफ़ा पढ़ के अल्लाह के नबी के रोज़े तक पहुँच जाते हैं बैठे बैठे। ये तो सरासर पे शिर्क है, इससे तो बिल्कुल इंसान को अवॉइड करना चाहिए। कोई बंदा ऐसा ना करे। तसव्वुफ पे आप जाके किताबें पढ़ें तो इस तरह की चीज़ें मौजूद हैं कि पहले इस दर्जे पे आप पहुंचेंगे, फिर दूसरे पे पहुंचेंगे, फिर तीसरे के पहुंचेंगे। बाज़ मजलिसों में कुछ इससे वज़ाइफ कराए जाते हैं कि जिसमें अल्लाह के नबी की ज़्यारत करवाने का दावा किया जाता है। बाज़ जो है वो ज़ाकिर कल्बी को, यानी दिल से जिक्र करने वाले को, बैतुल मामूर का तवाफ़ करवा के लाते हैं जहाँ फरिश्ते सजदा करते हैं। अल्लाह के नबी ने तो ऐसा कुछ नहीं किया। ये चीज़ें आम होती हैं ना तो अमल पीछे हो जाता है। फिर लोग कहते हैं हम ये कुछ जो कर रहे हैं अब इसके बाद हमें क्या करना है। इसी तरह बाज़ कहते हैं कि ये सारे तसव्वुफ की टर्मिनोलॉजीज हैं कि ज़ाकिर जो होता है वो मुनकर नकील के सवालों से महफूज हो जाता है, वो वहाँ कब्र में बैठ के अल्लाह अल्लाह ही करता रहता है, और ना सिर्फ ये कि मुनकर नकील उससे दूर चले जाते हैं बल्कि उसकी कब्र पे आने वाले लोगों को उससे फैज पहुँचता रहता है। ये सब चीज़ें न सहाबा ने की, न अल्लाह के नबी ने की, और इससे फिर मसनून अमल की लज़त ख़त्म होती है। कभी आप देखिए कि कोई भी एक मार्केट में ब्रांड आता है ना, फिर उसके कॉपी आने लगती हैं। तो एक प्रिंट आपने देखा बहुत अच्छा है, कीमती लॉन है, ले लिया, बाद में देखते हैं कि हर 100, 200, 400 वाले सूट में भी वही प्रिंट है, क्या होगा? लोग कहेंगे लो मैं क्यों लूँ इतना महंगा, मैं फिर लेना तो वही ले लूँ, अगर आप सिर्फ प्रिंट लेके करना चाह रहे थे। इसी तरह से जब ब्रांडेड चीज़ों की बजाय कॉपीड अमल आने लगते हैं ना मार्केट में, तो लोग ब्रांडेड छोड़ देते हैं। उनको लगता है कि ये मुश्किल है, इनको तो हम कर नहीं सकते, और ना सीखते हैं, सही लफ्ज़ नहीं अदा कर सकते, दुआएं बाज़ दफ़ा लोग पढ़ते हैं बिल्कुल दुरुस्त तरीके से नहीं पढ़ते। सोने जागने खाने पीने उठने बैठने की दुआएं पढ़ने वालों को तो मेरा हल इसके बाद कोई और वक्त ही नहीं मिलता। फिर इसी तरह आप देखिए कि दुआ के अंदर ये चीज़ एक और भी जो देखी गई है, और वो क्या है कि जब भी कोई दुआ पढ़ी भी जाती है उसके अंदर भी इजाफे कर दिए जाते हैं। मसलन रब्बना आतीना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरती हसनतम वक़िना अज़ाबन्नार, कुरान पाक में इतनी है। हमारे कल्चर में अमूमन इसके आगे लफ्ज़ बढ़ाए जाते हैं, वकीन अज़ाबल कब्री, वकीन अज़ाबल हशरी, वकीन अज़ाबल मीज़ान। इससे लगता है कि हम कोई चीज़ प्योर नहीं खाते ना, जैसे फ्रूट पे भी हम मिर्च मसाला डालते हैं, तो दुआएं भी हमें थोड़ी सी बढ़ा के पढ़नी होती है, इसकी भी इजाजत नहीं। एक सहाबी ने एक मौके पर सिर्फ रसूल की जगह नबी का लफ्ज या नबी की जगह रसूल का लफ्ज बोल दिया था तो अल्लाह के नबी ने मना कर दिया था। और सूरह हुजरात की आयत, पहली आयत में आता है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैना यदी अल्लाह व रसूलिही वत्तकुल्ला, कि ईमान वालो अल्लाह और उसके रसूल से आगे ना बढ़ो और अल्लाह से डरते रहो। तो लिहाजा यहाँ तक हमने ये बात देख ली कि जो चीज़ें अल्लाह ताला ने हमें बताई हैं उस पर इंशाल्लाह अमल करना है। बस दुआएं इतनी छोटी छोटी हैं, यकीन करें कि उसके ऊपर उसको पढ़ने से इतना बड़ा अजर है कि इंसान हैरान होता है कि हम लोग फिर भी नहीं पढ़ते। बस आप देखिए कि सुबहान अल्लाह ही व बिहम्दी ही, कुछ मुश्किल है? सुबहान अल्लाह ही व बिहम्दी ही। अल्लाह के नबी ने कहा कि 100 बार ये जुमला जो पढ़ता है या ये दुआ मांगता है तो समंदर की झाग के बराबर भी उसके गुनाह तो अल्लाह उसको माफ कर देगा। मुश्किल है? हम जितने यहाँ बैठे हैं जो कुरान से भी जुड़े हुए हैं, हम में से कितने लोग हैं जो वाकई ये पढ़ते हैं? सुबह शाम की दुआओं में भी आता है। और समंदर के झाग, मैं कहती हूँ कि हमें इतने डॉलर्स को दिखाए, इतने क्रोन्स दिखाए तो हम एड़ियों के बल चले, और पढ़ना कैसे? ऐसे ही सुबहान अल्लाह कभी सुबहान अल्लाह। अब आ रहे हैं ना रास्ते में, अब देखें बस में, गाड़ी में, इवन ड्राइव कर रहे हैं, नजर जहां पड़े सुबहान अल्लाह कभी नहीं गिन पा रहे। शऊर के साथ पढ़ें कि अल्लाह ताला मैं 100 दफा पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ, इंशाल्लाह आपको फायदा होगा। इसी तरह देखिए कि इतनी अल्लाह के नबी की दुआओं में, जिसको आप कह सकते तासीर है या खजाने हैं, कि अल्लाह के नबी की सिखाई हुई दुआओं में कि 7 दफा सुबह शाम हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम, सूरह तौबा की आखिरी आयतें भी हैं ये, सिर्फ 7 दफा पढ़े। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि दुनिया तो दुनिया, आखरत के भी अल्लाह ताला दीन दुनिया दोनों के उसके गम दूर कर देता है। सही अबू दाऊद की रवायत है। और मैं कहती हूँ कि मैं इसकी दलील देती हूँ, मैंने जब से ये शौरी तौर पे दुआ मांगनी शुरू की, ऐसा लगता है कि दिल में गम आते ही नहीं है, जो फिर है हो रहा है तो फिर हो रहा है, अब क्या करें, बदल तो नहीं सकते, दुआ कर देते हैं, ख्वाहिश तो होती है। इसी तरह देखिए कि खूबसूरत हशर की आखिरी 3 आयतें, वो अल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा से लेके आखिर तक, उससे पहले औज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम, 3-3 दफ़ा, और उसके बाद ये 3 दुआएं। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जो सुबह पढ़ेगा शाम तक 70,000 फरिश्ते अल्लाह ताला की तरफ से मुकर्रर कर दिए जाते हैं जो उस बंदे के लिए दुआ करते हैं, और अगर वो उस दिन में मर जाए तो शहादत का दर्जा पाता है, और कोई शाम को करेगा तो रात को, रात में भी यही मामला है, ये तिर्मिज़ी की रिवायत है, दारमी की। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हमें भूली हुई हैं। जो लोग दिन में पूरी किताब भी पढ़ते हैं दुआओं की, आप उनसे भी पूछिए तो अक्सर वैसी चीज़ें नहीं पढ़ते। हमारा दीन सादा है, फ़राइज़ के पाबंद रहें, हराम के करीब ना जाएं, मामलात अच्छे रखिए, उसके बाद इस किस्म के हल्के हल्के वज़ाइफ जो अल्लाह के नबी से मौजूद हैं इनको करते रहिए, इंशाल्लाह ताला अल्लाह के हुक्म से फ़ायदा होगा। ना तो आप बेसोचे समझे इन सारी चीज़ों को गलत कहेंगे, ये भी ज़यीफ़ है, ये भी ख़राब है, इसका मत ये ऐसा है, बिदत है, ये है, तहकीक कर लीजिए, जिस चीज़ की चीज़ सही मिल जाती है उसको ले लो। बस लोगों ने एक ही मैं रखा होता है, हमने तो कभी नहीं पढ़ा, हमने तो कभी नहीं सुना, तो हमने क्या सुना, रिसर्च कर ले कि भाई जैसे कभी कोई नई चीज़ मेरे सामने आए और लोग पूछे तो मैं कहती हूँ भाई मैंने तो नहीं पढ़ी, मेरा इल्म तो इतना नहीं है, आप जाके चेक कर लें, अगर आपको इसकी कोई हदीस को इसकी दलील मिलती है तो ले लें। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि वो दुआओं को वाकई हमारे दिल की आवाज़ बना दे, दिल की पुकार बन जाए, इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिखाए हुए तरीक़ों पे चलेंगे, कुरान और सुन्नत, ये दो चीज़ें हमारी ज़िंदगी में रहेंगी तो अल्लाह ताला से फिर बाकी अमाल की भी कबूलियत की दुआ करेंगे। अब इंशाल्लाह ताला हम इसके बाद अब बाकायदा आपको शुरू करेंगे, और कुछ चीज़ें जो हमने यहाँ की हैं उसके दलाइल हमें अहदीस के साथ मिलेंगे। इस दुआ के साथ दुआ को अपनी आज की नशिस्त को ख़त्म करते हैं कि बल्लम अकुम बिदुआई का रब्बी शकीया, क्या मेरे रब मैं तुझसे मांग कर कभी भी ना मुराद नहीं हुआ। ये ईमान होना चाहिए एक बंदे का, सूरत मरियम के आयत 4 में यही पैगाम दिया गया। तो जिस यकीन के साथ अल्लाह से मांगेंगे अल्लाह ताला हमें देगा। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक।